नमस्कार भारत, तारीख 8 अगस्त दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार विधानसभा में भागलपुर दंगों पर जस्टिस एनएन सिंह समिति की रिपोर्ट पेश, रिपोर्ट में तत्कालीन सरकार और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल।
उस समय की कांग्रेस सरकार, जो उस समय मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, और वो दोषी हैं, और इसके अलावा जो रूरल एसपी था वो दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
संसद में ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी सफाई।
मैं कहती हूँ अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती, मरने के लिए छोड़ देती। ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है।
सोनिया गांधी ने कहा कि सुषमा स्वराज हैं नौटंकी में माहिर। साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। बिहार के भागलपुर में 1989-90 में हुए दंगों से संबंधित एक और जांच रिपोर्ट कल बिहार विधानसभा में पेश की गई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश एनएन सिंह की अध्यक्षता वाले सांप्रदायिक दंगा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में 22 मामलों की जांच करते हुए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। इनमें भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दंगे के दौरान तत्कालीन भागलपुर जिले में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन CPA की बैठक में अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को नहीं बुलाया गया तो भारत इस बैठक का बहिष्कार करेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए इसकी विधानसभा के अध्यक्ष को बैठक में शामिल होने का न्यौता नहीं दिया है। ये बैठक 30 सितम्बर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है और इसमें सुमित्रा महाजन समेत भारतीय राज्यों की विधानसभा के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। लंदन स्थित CPA के 53 सदस्य देश हैं और ये विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों में सालाना बैठक आयोजित करते हैं। पाकिस्तान पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। सुमित्रा महाजन ने कहा,
इंडिया रीजन में एक विधानसभा को निमंत्रण नहीं आना तो पूरी इंडिया रीजन ने सोचना चाहिए। आज उसी के लिए सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों की बैठक थी और आज हम सब ने मिल करके एक निर्णय लिया है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर को निमंत्रण नहीं आता है तो इंडिया रीजन इस्लामाबाद में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा, हम बायकॉट करेंगे।
ये थे सुमित्रा महाजन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद एक दो बम विस्फोट हुए जिनमें कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हमलावरों ने एक पुलिस अकादमी को निशाना बनाया जहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। इसमें कम से कम 25 लोग मारे गए। बलबाइयों ने शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक नेटो सैन्य ठिकाने पर भी हमला किया। इससे पहले एक सरकारी अहाते में एक ट्रक में बम विस्फोट हुआ जिसमें 15 नागरिक मारे गए। माली में बंदूकधारियों ने माली के शहर सेवारे में एक होटल पर हमला किया है जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। इनमें 5 सैनिक, एक संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी और 2 बंदूकधारी हैं। अधिकारियों के मुताबिक संभव है कि एक रूसी और 3 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को हमलावरों ने होटल के अंदर बंधक बनाया हुआ हो। एक यूक्रेनी नागरिक कथित तौर पर हमलावरों से संघर्ष के दौरान वहां से बच निकला है। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति से देश के मुख्य विपक्षी अभियान को स्थानीय चुनावों से प्रतिबंधित करने के हक में फैसला लिया है। ये चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। पारनास के नेतृत्व वाले दल का पंजीकरण 4 में से 3 क्षेत्रों में रद्द कर दिया गया है। ये पार्टी बोरिस नेमसेव की है जिनकी हत्या कर दी गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बिहार विधानसभा में कल भागलपुर दंगों की जांच पर जस्टिस एनएन समिति की रिपोर्ट पेश की गई। 1000 पन्नों की रिपोर्ट में वर्ष 1989-90 में हुए भागलपुर दंगों के लिए तत्कालीन सरकार और पुलिस के लापरवाही भरे रवैये पर सवाल उठाए गए हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन नीतीश सरकार ने भागलपुर सांप्रदायिक दंगा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखा। नीतीश सरकार ने ही अपने पहले कार्यकाल में फरवरी 2006 में इस आयोग का गठन किया था। रिपोर्ट में 22 मामलों की जांच करते हुए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और इनमें से भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने जिन IPS अधिकारियों को दोषी पाया है उसमें भागलपुर जिले के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक, SP सिटी और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में क्या है और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? वहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम दूसरे पहलुओं को समझने के लिए देर रात मैंने बात की स्थानीय अखबार प्रभात खबर के रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र तिवारी से।
इसमें इस दंगे को लेकर के डिटेलिंग की गई है कि इसमें कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई, कितने पे मामले दर्ज हुए, कितने पे क्या कार्रवाई हुई, और कुल मिलाके जो इसका लब्बोलुआब है वो ये है कि उस समय की कांग्रेस सरकार, जो उस समय मुख्यमंत्री थे सत्यनारायण सिन्हा, और वो दोषी हैं, और इसके अलावा जो रूरल एसपी था वो दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से ये रिपोर्ट वैसे तो फरवरी में सरकार को सबमिट कर दी गई थी, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले कैबिनेट में आई और अब आखिरी सत्र था जिसमें यह पेश किया गया, आखिरी सत्र के आखिरी दिन।
इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है, और मतलब सवाल यही है कि इतना लंबा अरसा बीत गया, रिपोर्ट आई, उसके बाद इसका भविष्य कुछ है भी या सिर्फ ये भी लीपापोती वाली बात है?
इसमें जो मेरी जानकारी है, जिस ऑफिसर को इंडिकेट किया गया है वो इस समय आईबी में है, और जो वहाँ के एसपी थे उस समय, भागलपुर के जो एसपी थे वो एडीजी ट्रेनिंग है। तो एसपी को तो नहीं कहा गया, रूरल एसपी को जरूर इंडिक्ट किया गया है कि उनकी वजह से ये दंगा रूरल इलाकों में फैला। लेकिन साथ में ध्यान देने की बात ये भी है कि उस समय भागलपुर जिले में रूरल एसपी की पोस्ट नहीं होती थी, दंगा शुरू होने के बाद वो पोस्ट क्रिएट की गई और उसमें वहां पर जो भी उस समय जो अफसर था उसको नियुक्त किया गया, और इस रिपोर्ट में उसी ऑफिसर को इंडिक्ट किया गया है कि उसकी वजह से ही रूरल इलाके में दंगा फैला।
इस रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या?
मुझे नहीं लगता है कि इसका तुरंत इस विधानसभा चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है, और चूंकि अगले 10-15 दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो इस पर कोई तुरंत कार्रवाई होने वाली है इसकी भी संभावना नजर नहीं आती है। तो विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार आएगी उस सरकार पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा।
इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे वक्त में जबकि चुनाव बिहार में होने वाले हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
नहीं, इसमें तुरंत कोई फायदा जेडीयू को है या आरजेडी के साथ उनको कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोशिश की गई है कि मुस्लिम वोटर जेडीयू के साथ आए, और जेडीयू ने पूरी रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश की है कि उसने तो उस आयोग की रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश की गई है कि इस सरकार ने क्या क्या किया। क्योंकि जैसे एक एक जो इसमें एक व्यक्ति था कामेश्वर यादव, जो जिस पर आरोप लगे थे, लेकिन जब आरजेडी की गवर्नमेंट आई, आरजेडी क्या तब तो जनता दल हुआ करता था, लालू जी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद कामेश्वर यादव को बरी कर दिया गया, और यही नहीं, पुलिस ने उसे प्रशस्त पत्र दिया सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो फाइलें फिर से खुली और उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उससे सजा हुई और आज कामेश्वर यादव जेल में है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट का इस चुनाव पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर नीतीश कुमार को इसका फायदा इस तरह से हो सकता है कि मुस्लिम्स जो अभी आरजेडी के वोटर माने जाते हैं वो जेडीयू की तरफ आ जाए, ये कोशिश इसके जरिए की गई है।
बिहार विधानसभा में भागलपुर दंगों पर जस्टिस एनएन सिंह समिति की रिपोर्ट पेश, विश्लेषण कर रहे थे प्रभात खबर के रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र तिवारी। पच्चीस सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों ने संसद भवन परिसर में कल लगातार चौथे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के स्पष्टीकरण को कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस पर पलटवार किया है। पूरी रिपोर्ट सुनिए किसने क्या कहा संदीप सोनी से।
मैं कहती हूँ अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती, मरने के लिए छोड़ देती। ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है जहाँ ललित मोदी की मदद नहीं हुई, मदद उस पत्नी की हुई जो भारतीय नागरिक है।
ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संसद में दिए स्पष्टीकरण को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नाटक बताते हुए सुषमा स्वराज पर पलटवार किया।
आप धक्का दोगे, देखिए फैब्रिक्स करने में माहिर है।
सोनिया गांधी की इस बात को उनके बेटे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे बढ़ाते हुए न केवल सुषमा स्वराज के सवाल का जवाब दिया बल्कि उनके परिवार पर ललित मोदी से पैसा लेने का आरोप भी लगाया।
सुषमा जी ने बहुत अच्छा भाषण किया, विपक्ष बाहर बैठी है और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सोनिया जी ये नहीं करती। जब भी चोरी होती है चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। जब भी चोरी होती है पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इन आरोपों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा,
महिला जो मेहनत कश है वो और उनके बच्चे अपनी मेहनत से दो वक्त की रोटी कमा चुके हैं। ये प्रमाण महिला उनके बच्चे दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में शायद गांधी परिवार वो एक्सेप्शन हो जहां पर धूप में अपना खून पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी ना कमानी पड़ती हो, लेकिन इस प्रकार का आरोप जो कर रहे हैं उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूं।
स्मृति ईरानी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया।
लिखे हुए कागजों पर पढ़ करके अपने कार्यकाल को निपटाया हो, वैसे लोग जब ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये नाट्यक्रम है, निश्चित रूप से मुझे अफसोस है कि जो ना सदन में बोलते हैं ना दिखते हैं ना बात कर सकते हैं वो सुषमा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करें।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दे रही।
एक भी जो जनहित का मुद्दा है, जो मुख्य बिंदु है, उस पर कोई जवाब नहीं सुनते हैं। और जाहिर है इसलिए कि ऐसा कोई जवाब उनको है नहीं तथ्यों के आधार पर।
आरोप प्रत्यारोपों के बीच संसद भवन परिसर में कल लगातार पांचवें दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने 25 सांसदों के निलंबन के विरोध में काली पट्टियों और झंडों के साथ प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान लोकसभा में कुछ कामकाज फिर भी हुआ लेकिन राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। हंगामा इतना हुआ कि राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
तो संसद में कल भी जारी रहा आरोप और प्रत्यारोप का दौर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पिछले दिनों भारत सरकार ने 857 पोर्न साइट्स को ब्लॉक कर दिया। इस फैसले पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद सरकार ने अपना रुख बदला और कहा कि प्रतिबंध को आंशिक तौर पर हटाया जाएगा। जो वेबसाइटें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा नहीं देती उन पर से रोक हटा दी जाएगी। इस बार इंडिया बोल में यही है बहस का विषय, क्या पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अपनी राय रखने के लिए आप हमें 1811-7000 और 1811-7001 पर मुफ्त फोन करें।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू होने के बाद से सभी की नजरें उन मंत्रालयों को ढूंढ रही हैं जिनमें काम तेजी से होता दिखे। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के तमाम मंत्रियों के बीच भी अपना काम उजागर करने की होड़ चल ही रही होगी। पर्यावरण और वन मंत्रालय एक ऐसा ही मंत्रालय है जिस पर अब ये सवाल उठने लगा है कि यह प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तेज है। हालांकि खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन आरोपों को ये कहकर नकारा है कि पिछली सरकार में मंजूरी मिलने की प्रक्रिया लचर थी। नितिन श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट।
भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय को लेकर पिछले कई वर्षों से एक लंबी बहस छिड़ी रही है। पिछली यूपीए सरकार में एक के बाद एक कई मंत्रियों ने इस मंत्रालय को अपने तरीके से चलाया और उसके बाद यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो गए। जयराम रमेश, जयंती नटराजन और वीरप्पा मोइली समेत फेरिस्त लंबी है। जब बारी भाजपा सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की आई तो एकाएक माहौल में बदलाव भी दिखा और आलोचना के मुद्दे भी बदले। कांग्रेस सरकार में कई मंत्रियों का कथित तबादला इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार के भीतर और विपक्ष से आरोप लग रहे थे कि फैसले रुकने से देश दुनिया में नकारात्मक संदेश जा रहा है। साथ ही तमाम विदेशी निवेशकों ने भारत में रुकी हुई फाइलों के चलते अपना पैसा कहीं और लगाना शुरू कर दिया था। शायद यही वजह रही कि प्रकाश जावड़ेकर के मंत्रालय ने शुरू से ही मामलों के जल्द निपटारे पर ध्यान दिया। एक नजर दौड़ाते हैं कुछ अहम फैसलों पर जो जुलाई 2014 से अब तक हुए हैं। पहले बात प्रस्तावों की।
जिन क्षेत्रों में मामले विचाराधीन हैं, उनमें 168 मामले कोयला खनन में हैं, 140 मामले औद्योगिक परियोजनाओं में, जबकि 102 मामले मूलभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हैं। सबसे कम मामले हैं परमाणु सुरक्षा क्षेत्र में।
और अब ये भी जान ही लिया जाए कि आखिर किन किन राज्य की परियोजनाओं को ज्यादा फायदा पहुंचा।
अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा हरी झंडी मिली है महाराष्ट्र में 78 प्रोजेक्ट्स को। दूसरे नंबर पर है गुजरात जहां 44 प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर हरियाणा है जहां 18 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। अगर सबसे कम हरी झंडी मिलने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बिहार में तो केवल एक प्रोजेक्ट को ही हरी झंडी दी गई है।
हालांकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कई दफा कहा है कि उनके मंत्रालय में परियोजनाओं को हरी झंडी देने के लिए किसी तरह का पर्यावरण टैक्स नहीं लगता। इनका निशाना यूपीए रही है क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ने प्रचार के समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले फैसलों पर आरोप लगाए थे। बहरहाल प्रकाश जावड़ेकर के मंत्रालय में एकाएक आई स्फूर्ति को अब कांग्रेस भी निशाना बना रही है। पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि भाजपा की पर्यावरण संबंधी जल्दबाजी गलत है। उधर जाने माने पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर को लगता है कि सैकड़ों ग्रीन परियोजनाओं को पास कर देने भर से समस्या का निदान नहीं होगा। उन्होंने कहा,
भारत में जो पर्यावरण संसाधन है, जो जंगल है, जो नदी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पहाड़ है, जो जमीन है, ये ऐसे संसाधन है जिसके ऊपर समाज के सबसे गरीब तबका जो है उसके ऊपर निर्भर है। तो एक पर्यावरण का मामला सिर्फ पेड़ और बाघ को बचाने या पतंग को बचाने के लिए नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे देश में पर्यावरणीय गवर्नेंस जो है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, वो हमेशा ही बहुत कमजोर रहा है।
अब रहा सवाल कि पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को हरी या लाल झंडी दिखाने में यूपीए और एनडीए में से किसका रोल कैसा रहा। हिमांशु ठक्कर के अनुसार दोनों के फैसलों को एक दूसरे से बेहतर कहना बिल्कुल गलत होगा।
दिक्कत यह है कि हमारे देश में वो यूपीए सरकार का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो या एनडीए का, दोनों का रिजेक्शन रेट ऑलमोस्ट जीरो है। कोई भी पर्यावरण मंत्रालय दोनों के समय में रिजेक्ट कोई प्रोजेक्ट को नहीं कर रहे थे, बहुत कम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे थे।
अभी तो आलम यह है कि कुल 254 नई पर्यावरण परियोजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है और कम से कम 450 ऐसी हैं जिन पर जल्द से जल्द फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन सरकार को इस बात पर पूरा ध्यान भी बनाए रखने की जरूरत है कि इस प्रक्रिया के बीच पर्यावरण बचाने संबंधी सभी मानक पूरे होते जा रहे हों। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। और अब अखबार के पन्ने पलटने का वक्त आ चला है। प्रगति सक्सेना पलट भी चुकी हैं और मैं भी पलट लेता हूं।
जी,
प्रगति क्या कह रहे हैं अखबार?
सारे अखबारों में जो खबरें मुख्य प्रमुखता से ली गई हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो जो संसद में सुषमा स्वराज जी ने जो कहा उस पे,
जिसका भी हमने अपनी रिपोर्ट सुनाई, अपने श्रोताओं को
रिपोर्ट भी सुनाई, उस पे जो है वो सब जगह सारे अखबारों में ये है कि सुषमा स्वराज पर का कथन और उस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीधा अटैक, डायलॉग पर डायलॉग, कोई कह रहा है कि ड्रामेबाज हैं, मतलब अखबारों में कहा गया है कि उन्हीं के सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को लिया गया है। उसके बाद एक यादव सिंह के मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच नहीं चलनी चाहिए यादव सिंह के मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो चलेगी। पाक में मीटिंग का बायकॉट हुआ है जम्मू कश्मीर के स्पीकर को न्योता ना देने के लिए,
और इसमें सुमित्रा महाजन की टिप्पणी भी आई थी।
और बांग्लादेश में फिर एक ब्लॉगर की हत्या कर दी गई है। एक और दिलचस्प खबर यह है कि एक फ्रीलांस पत्रकार थे जो इराक एम्बेसी पहुंचे मुंबई में आईएएस प्रवक्ता बनने के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो खबरें हैं जो कमोबेश सभी अखबारों में हैं। उसके अलावा आईआईटी की तर्ज पर बनेंगे आईआईएम, ये हिंदुस्तान में खबर है। राष्ट्रपति की पत्नी अस्पताल में भर्ती हो गई हैं, उन्हें दिल्ली ले आया गया है, ये हिंदुस्तान और नई दुनिया दोनों में है खबर। हिंदुस्तान में खबर है फिक्सिंग की कि क्रिकेटरों के नाम उजागर नहीं किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर उनके सम्मान का भी सवाल है। दैनिक जागरण में है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली पानी टेलीफोन के और होटलों के बिल अगर विधायकों सांसदों और पार्टियों ने नहीं चुनाए तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। दुनिया की पहली ऑनलाइन जांच दिल्ली में शुरू हुई है, यह है चोरी एप्लीकेशन, जिसमें कि आप अपने वाहनों की चोरी की एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामी कोचिंग में पढ़ने के लिए दिल्ली सरकार अब छात्रों को स्कॉलरशिप देगी, ये भी दैनिक जागरण में है।
चलते चलते मैं एक बहुत ही रोचक खबर है, एम्स रोचक नहीं बल्कि
ये बड़ी दुखद खबर पे आ रही थी।
एम्स में लाइव सर्जरी के दौरान गई मरीज की जान और इसका सीधा प्रसारण हो रहा था और डॉक्टर इतने उलझे कि उस मरीज की जान नहीं बचा पाए। एक और खबर कि याकूब की अंतिम अपील नामंजूर करने वाले जज को धमकी दी गई है, ऐसा जनसत्ता का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में है, जहां वो 12 तारीख से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ अपने हाथ खोल रही है। 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 112 रन बनाए थे और पहली पारी के आधार पर मिली 230 रनों की बढ़त के बाद अब उसके खाते में 342 रन जैसा बड़ा स्कोर है और 7 विकेट भी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद भारत के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। पहली पारी में जहां भारत के अजिंक्य रहाणे ने 109 रन बनाए, वहीं कप्तान विराट कोहली 8 और रोहित शर्मा 7 रन बनाकर चलते बने। जब गेंदबाजी करने का समय आया तो ईशांत शर्मा ने 23 रन पर 5 विकेट लेकर श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 को ध्वस्त कर डाला और वो केवल 121 रन पर ढह गई। भारत की दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन विराट 18 और रोहित 8 रन ही बना सके। इस टाइम के समय चेतेश्वर पुजारा 31 और केएल राहुल 47 रन बनाकर खेल रहे थे। अब जरा रोहित शर्मा को सुन लें जो श्रीलंका जाने से पहले कह रहे थे।
जो टेस्ट स्पॉट हमें किसी भी प्लेयर को मिलता है वो काफी इजीली नहीं मिलता है, तो मेरा भी वही सिचुएशन था। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो स्पॉट मुझे मिला है वो मैं एकदम आसानी से देना नहीं चाहता और टीम में कंपटीशन हमेशा ही होगा।
अब ये तो सभी को मालूम है कि टीम में जगह बनाने के लिए रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा में संघर्ष होगा। कप्तान ने तो उन्हें नंबर 3 से लेकर सलामी बल्लेबाज बनाकर भी देख लिया, वहीं पुजारा ने पहली पारी में 42 और दूसरी पारी में नाबाद 31 रन बनाकर अपना दावा तो पेश कर ही दिया है। उधर नॉटिंगम में एशेज सीरीज के 4th टेस्ट मैच में पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 60 रन पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने खेल के दूसरे दिन कल पहले तो अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 391 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की और 331 रन की विशाल बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट 241 रन तक पहुंचते हासिल कर लिए, यानी अभी भी पारी की हार से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 90 रन बनाने हैं जबकि उसके 3 विकेट बाकी हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने दूसरी पारी में 35 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉजेस 48 रन बनाकर क्रीज पर हैं। उधर न्यूजीलैंड ने हरारे में खेले गए 3rd और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 38 रन से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की। और अब बात बैडमिंटन की। सोमवार से इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है, जहां भारत भी अपनी चुनौती मजबूती से पेश करेगा। महिला वर्ग में साइना नेहवाल को 2री और 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम करने वाली पीवी सिंधु को 11वीं वरीयता दी गई है। पुरुष एकल वर्ग में भारत के के श्रीकांत को 3री और पी कश्यप को 10वीं वरीयता दी गई है। पिछले दिनों कनाडा ओपन जीतने वाली भारत की महिला युगल खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को 13वीं वरीयता दी गई है। इस चैंपियनशिप में साइना नेहवाल से कितनी उम्मीदें करें, इसे लेकर उनके कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी विमल कुमार कहते हैं।
She's playing well. उनको 5-6 weeks अभी मिला वो ट्रेनिंग के लिए। उनका भी ड्रॉप बहुत टफ है। लास्ट 16 स्टेज में उनका ताकाहाशी से खेलने का है, वो जापान का नंबर 1 खिलाड़ी है उनके साथ। फिर वैंग निहान वो एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वो भी है उसके क्वार्टर में। सो बहुत टफ है बट शी इज ट्रेन वेल एंड लेट्स सी।
तो पहले ही दौर से भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगी मुश्किल चुनौती। और अब बात टेनिस की। ATP सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन बर्जिया को बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव और अमेरिका के मार्डी फिश के खिलाफ वाकओवर मिला, जिससे वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
खेल और खिलाड़ी हमने सुन लिया और अब उन खबरों की बात करेंगे जिन पर रहेगी हमारी नजर।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज उड़ीसा के कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज शाम को ही वे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ग्लोबल लीगल एजुकेशन पर एक सेमिनार में भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज लखनऊ में हिंसा और चरमपंथ पर उलेमा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते उलेमा ए हिंद ने इसमें भाग न लेने का फैसला किया है। ताइवान में आज सुबह टाइफून सुडेलोर समुद्री तूफान की आशंका से हजारों लोगों ने कुछ इलाकों को खाली कर दिया है। तूफान से पहले ही समुद्र की तेज लहरों में एक माँ और बच्चे की मौत हो चुकी है। रेड क्रॉस ने इसराइल के अधिकारियों से अपील की है कि इसराइल की एक जेल में 50 दिनों से कैद एक व्यक्ति को तत्काल उसके परिवार के सदस्यों से मिलने दें। ये व्यक्ति 50 दिनों से भूख हड़ताल पर है और अब उसकी हालत नाजुक है। युगांडा की राजधानी कंपाला में आज समलैंगिकों की परेड का आयोजन किया गया है। पिछले साल एक सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को उलट दिया गया था, उसके बाद से आयोजित ये पहली ऐसी परेड है। ब्रसेल्स में आज कुर्द समर्थक दलों ने तुर्की हवाई हमलों के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया है। तुर्की PKK चरमपंथियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। प्रदर्शनकारी युद्ध विराम के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना चाहते हैं।
कल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी फिल्म बंगिस्तान ने। कैसी थी फिल्म? फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी और सुमरनप्रीत कौर।
धर्म रिलीजन पर बहुत सारी फिल्में पहले बनी हैं, टू द पॉइंट फिल्में बनी हैं, सीधी सादी साधु महर्षि या हिस्टोरिकल एपिक्स पर फिल्में जैसे जय संतोषी माँ, साई बाबा, रामायण। अब रिलीजन पर कॉमेडी और सिटायर फिल्में भी बनने लगी हैं, जैसे ओ माई गॉड और PK। और रिलीजन और टेररिज्म के मुद्दे पर एक फिल्म आई है, कोशिश है लोगों को हंसाने की। फिल्म का नाम है बंगिस्तान।
इंजीनियर ना बनूंगा ना डेंटिस्ट बनूंगा, मम्मी मुझको तेरी कसम टेररिस्ट बनूंगा।
बंगिस्तान, जिसमें नजर आ रहे हैं रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, चंदन रॉय सान्याल और जैकलीन फर्नांडिस। उस फिल्म को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने और प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर और रिशेद सिद्वानी ने। सुनते हैं रितेश देशमुख अपनी फिल्म के बारे में क्या बता रहे हैं।
फिल्म एक्चुअली दो ऐसे लोगों की कहानी है जो ब्रेन वॉश किए गए हैं, सुसाइड बॉम्बर बनने जाते हैं। एक पोलैंड में एक पीस मिशन है जहाँ पर वर्ल्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स मिल रहे हैं और उसको बॉम्ब करने की कोशिश करते हैं लोग।
ओ मित्रा, ओ बंधु, छीनू मैं सबकी सांस, हो मन में है विश्वास।
मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी। नम्रता, कैसी लगी बंगिस्तान?
एक उम्मीद थी कि शायद हंसाएगी और हंसी हंसी में बहुत कुछ कह देगी। एक लार्जर आइडिया लॉडेबल है, गाने काफी अच्छे थे, राम संपत का म्यूजिक काफी इम्प्रेसिव लग रहा था। दो, बहुत प्रिडिक्टेबल है और बहुत बार किया जा चुका है कि किस तरह से धर्म शायद हम लोगों का सबसे बड़ा एनिमी है वर्ल्ड ओवर राइट नाउ। लेकिन इसमें जो दिखाने की कोशिश करी गई है कि क्या अदल बदलने से रिलीजन के आप एक दूसरे को बेहतर पहचान पाएंगे, ये आई थॉट वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया जिसको आगे लेके जा सकते थे। लेकिन फिल्म बहुत ही अधपकी सी खिचड़ी के समान लगी, पूरी तरह से ढंग से कुक नहीं किया गया है, ऑडियंसेस तक रीच आउट करती। मेन स्ट्रीम सिनेमा, मसाला सिनेमा बनाना भी अपने में आसान काम नहीं है। इस फिल्म के फिल्म मेकर्स को मेन स्ट्रीम रिलीजन में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, तो या तो इसको कम्प्लीटली क्वर्की बनाते, कम्प्लीटली ऑफबीट बनाते तो ये चलती। तो ज्यादा धमाका नहीं कर पाई इस हफ्ते की फिल्म। इस खिचड़ी को 5 में से 2 दूंगी।
और अब कार्यक्रम में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार।
बिहार के भागलपुर में 1989-90 में हुए दंगों से संबंधित एक और जांच रिपोर्ट कल बिहार विधानसभा में पेश की गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन की बैठक में अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को नहीं बुलाया गया तो भारत इस बैठक का बहिष्कार करेगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। एक घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को हेमंत कुशवाहा के साथ विदा दें। नमस्कार।